फिर आगे चलते हैं, गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू क्या है? इंसान का आईना है। किस बात का? कि अंदर क्या है। बर्तन से वही निकलता है जो बर्तन में होता है। बातचीत करते हुए तो हम दूसरों को बताते हैं, जब तक एक बंदा खामोश रहता है ना, पता भी नहीं चलता पढ़ा लिखा है कि नहीं, पता भी नहीं चलता कि ये किस कैलिपर का शख्स है। तो आप कह लीजिए कि गुफ्तगू ऐसी है जैसे बर्तन का ढक्कन उठाएं तो अंदर से क्या पकता हुआ निकल रहा है उसकी खुशबू आएगी ना। तो गुफ्तगू बहुत बड़ा हमारा एक ज़िंदगी का एक रोल है जिससे हम बच नहीं सकते। और देखिए, इंसान को जानवरों से अलग करने वाली चीज़ नुतुक है। नुतुक है बोलना। अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान दिया। और आगे क्या बोलिए? खलक अल इंसान, आगे अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इसको एक नेमत कहा है कि मैंने तुम्हें बयान की ताकत दी। आप पता है कि चौपाइयों को अरबी जुबान में क्या कहते हैं? बहीमा। छठे पारे में पढ़ चुके सूरत मैदा। क्यों कहते हैं? कैटल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, इनकी आवाज़ मुबहम होती है, भां भां करते हैं। गाय बकरी भैंस को देखिए, अगर आप और मैं भी ऐसे ही बोलते तो क्या होता। तो याद रखिए, गुफ्तगू बहुत ही अहम रोल है आपकी ज़िंदगी का। और आप और मैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन तो बदनाम है। इस पे एक पूरा सेशन है आपका नूरुल्लाह नूर का, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका। यहाँ चंद जुमलों में खुलासा कर लेते हैं अभी। पहली बात है कि बातचीत में हुस्ने खुल्क आना चाहिए। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिला शुबा मोमिन अपने हुस्ने अखलाक यानी उम्दा आदात की बिना पर रोज़ेदार, शब्बे यानी रातों को क्याम करने वाले शख्स का दर्जा हासिल करता है। यानी वो शख्स जो दिन में रोज़ा रखे और रात को क्याम करे। अबू दाऊद 4798। फिर दूसरी बात है, गुफ्तगू में बेहुदा गोई से बचना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में सबसे ज़्यादा महबूब और आखरत में मुझसे सबसे ज़्यादा करीब अच्छे अखलाक वाले होंगे, और मेरे नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा मबगूस और आखरत में ज़्यादा दूर बद अखलाक, बेहुदा गो, फैलाकर लंबी बात करने वाले, अल्लाह अकबर, और जबड़ा खोल कर बेतकल्लुफ़ बोलने वाले होंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत है 17895। एक एक लफ्ज़ को दोबारा बोलूँ, बद अखलाक बेहुदा गो कौन होते हैं? वल्गर टॉकिंग, गंदे लतीफ़े, फोखश किस्म के जोक्स, और फैला कर लंबी बात करने वाले। कितनी बात खींचते हैं, जैसे चुंगम को लंबा करते जाते हैं, बात लोग बातों को लंबा करते रहते हैं, और जबड़ा खोल कर बेतकल्लुफ़ बोलने वाले, यानी बॉडी लैंग्वेज है ये। फिर तीसरा अदब क्या है? कि गुफ्तगू साफ और वाज़ेह होनी चाहिए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह की गुफ्तगू इस कदर वाज़ेह होती कि हर सुनने वाला इसे समझ लेता। अबू दाऊद 4839। अब जाहिर है कि जब कोई बंदा आपकी बात सुनकर लिख सकता है या आप उसको इतने आराम से बोल रहे हैं तो कितना सुकून होगा आपकी आवाज़ में। और एक एक बात कहते सुनते हम सब अपने आप को चेक करें, यकीन करें, हम दूसरों को थप्पड़ कम मारते हैं, धक्के कम देते हैं। शायद ही कभी ऐसा मौका आया होगा, लेकिन दिन में कई बार अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से उसका दिल तोड़ देते हैं, थक्का शाही करते हैं। फिर इसी तरह चौथा अदब के बर्ताव में नरमी इख्तियार कीजिए। बर्ताव क्या होता है? लोगों से इंटरेक्शन। हज़रत अबू ज़र कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों के साथ नेक खुलकी से पेश आओ। जामे तिरमिज़ी 1987। नरमी इख्तियार कीजिए। आप देखिए कि सख्ती नहीं होनी चाहिए। सख्त चीज़ के साथ दूसरी चीज़ लगेगी ना, टकरा जाएगी। फ्लेक्सिबल होंगे ना, लोग भी आपके साथ अच्छे रहेंगे। इंशाल्लाह अखलाक हसना का टॉपिक आ ही रहेगा तो उसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। फिर उसके बाद अगली बात, हर बात मुंह से निकालते वक्त ये सोचिए, क्या मेरी इस बात से अल्लाह राज़ी होगा या नाराज़। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदा अल्लाह की रज़ामंदी की बात करता है और इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं होती, लेकिन अल्लाह उसके कई दर्जे बुलंद कर देता है। और अपोजिट भी है, अल्लाह की नाराज़गी वाली बात करता है, ध्यान ही नहीं है, बेतुकी बात कर दी, जहन्नुम में जाएगा। बुखारी 6478। फिर अगली चीज जिसका आपके बॉडी एक्शन से ताल्लुक है वो क्या है कि गुफ्तगू के दौरान खंदा पेशानी और खुश रवि इख्तियार कीजिए। खंदा पेशानी क्या है ये, और इसका ऑपोजिट क्या है, माथे पे आबसा व तवल्ला, तीवरियाँ। बिलीव मी, आप अगर अपने घर वालों का अपना आईना बना लें और उनको सच बोलने की इजाज़त भी दें, तो बच्चों को घर वालों को कहें कि ज़रा देखा करो कि मैं लगती कैसी हूँ जब मैं गुस्से में चीखती और चिंघाड़ती हूँ, और जब मैं मुंह बना बना कर फोन पे किसी एक के साथ दूसरी बहन की बातें कर रही होती हूँ। नकलें उतारना, अमूमन हमारे माथे पे तेवरियाँ क्यों होती हैं, घुटन का शिकार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू ज़र की रिवायत है, नेकी में किसी भी चीज़ को हकीर न समझो, अगरचे तुम अपने भाई से खंदा पेशानी, खंदा कहते स्माइल और पेशानी माथा, यानी आपकी स्माइल आपके माथे तक चली जाए, यानी अपने भाई के साथ एक स्माइली फेस के साथ मिलना ही क्यों ना हो, इसको भी हकीर ना जानो। बुखारी की रिवायत है 6023 और मुस्लिम 6690। तो फेस को रिलैक्स रखा करें। आपको पता है कि मुस्तकिल तनाव की वजह से हमारे अंदर की नसें भी दब जाती हैं और हमारे फेस पे कुछ लाइनें बन जाती हैं, कुछ लोगों की यहाँ रिंकल्स, एक तो एज के साथ बनती हैं वो तो एक नेचुरल, कुछ लोगों के यहाँ माथे पे पूरी तेवरिया, मुझे अच्छा नहीं लगता डाल के दिखाऊं, लेकिन आप देखिए इतना बंदा अजीब लगता है, और उनको देखकर तो ऐसे ही लगता है कि बस इन तुंक मिजाजी की कैफियत आती है। और नोट करें, अपनी एक दूसरे के साथ बडीज बना लें, अगर मेरे फेस पे कुछ ऐसा हो तो तुम ज़रा कुछ मुझे इशारा कर दिया करो, मेरे होगा तो मैं तुम्हें कर दूंगी, तो फिर लड़ाइयाँ पक्की हैं। आप स्माइल देते हैं ना, आपके कितने ग्लैंड्स अंदर से निकलते हैं और एनर्जी मिलती है। अब बहुत परेशान थके हुए ना, उसके बाद आप ज़रा सा रिलैक्स करें ना, मुस्कुराएं। घर में लड़ाई हो रही है मसलन, मुस्कुराएं, माथा रिलैक्स करें, एक सेकंड में आपको लगेगा कि वो टेम्परेचर डाउन हो गया, यकीन कर। हम तुंक मिजाजी और आगे से तेवरियां चढ़, आ गए हैं आप बुला लिया आपको, जाए मैं नहीं देती, खा लें खुद ही, मैंने नहीं आना, मैं नहीं बोलती, यानी हम क्यों इस तरीके का रवैया इख्तियार करते हैं। अपने आपसे एक सवाल तो करें, मेरे साथ रहने वाले मजलूम हैं कि बेचारे मजबूर हैं। पूछे तो सही अपने शौहरों से कि अगर आपको अब दोबारा चांस दिया जाए तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे, एक गलती दोबारा नहीं करते, पूछे, मैंने तो पूछा हुआ है, देखे ना कि पहली दफा तो खता हो गई, वो तो माफ है, कत्ले खता भी माफ है, थोड़ा बहुत उसका कफारा, लेकिन आप देखिए कि अब कर सकते हैं ना, तो फिर ये आपका अखलाक है। और आप कहते हैं कि हदीस है कि आपके अखलाक की सबसे बड़ी गवाही आपके घर वाले देंगे, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अना अहसनहुम खुलुका, मैं अपने घर वालों के मामले में सबसे ज्यादा अच्छा हूँ बाखलाक। अच्छा बाहर हम कैसे होते हैं, हेलो क्या हाल है, ठीक है, ओ बाय, थैंक यू सारा, समिया, गोरी गोरी, और बच्चों को देखकर जल्दी करो जूते पहनो, भाई क्या जुल्म क्या किया उन्होंने आपके बच्चे बन के। सच बताएं, जो हम बाहर वालों से स्माइली होते, घर जाते कितने लोग घर जाने के बाद भी स्माइली रहते हैं, वो कहते स्माइल कहाँ से है, घर जाते हैं घर इतना फैला होता है, कहीं बर्तन है खाने के, कहीं कुछ, और अब जाके यहाँ स्माइल, और जूते ही पहले बाहर देखते गुस्सा आ जाता है कि नहीं है। नहीं, घर वालों को सजा ना दें, जो होना था हो गया, एक्सेप्ट इट, सच्ची बात है। आप स्माइल से रहना शुरू कर दें, आपके घर के 50% मसले तो इसी से ही खत्म हो जाएंगे, तो तेवरी नहीं चढ़ानी इंशाल्लाह। और बातें खुरदरी ना करें, खुरदरी बातें करते हैं लेकिन किसी को नहीं अच्छा लगता। खुरदरा कपड़ा आपको अच्छा लगता है, चुभने वाला कपड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही खुश किस्म की चीज़ जो आपको इरिटेशन दे वो अच्छी लगती है। आप खुद क्या हैं, अपने लिए पूछे, क्या मैं अपने घर वालों के लिए सिल्क हूँ, मैं प्योर कॉटन हूँ, या मैं उनके लिए खद्दर हूँ, और पता नहीं और क्या कुछ। फिर उसके बाद पूरी कोशिश कीजिए कि गुफ्तगू के दौरान लड़ाई झगड़े की नौबत ना आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं जन्नत में उस शख्स के लिए, यानी जन्नत के किनारों पर एक घर का जिम्मेदार हूँ जो लड़ाई झगड़ा छोड़ दे अगरचे के वो शख्स हक पर हो, और फरमाया उस शख्स के लिए जिम्मेदार हूँ जन्नत के बिल्कुल बीच के एक मकान का कि जो झूठ छोड़ दे अगरचे दिल लगी के लिए कर रहा हो, मजाक झूठ मोटा है, जस्ट मैं तो जोक करता है, बस जोकिंग, और आज 1 अप्रैल तो फिर जोक तो करना ही होता है ना, नहीं। और आपने फरमाया मैं जिम्मेदार हूँ جنت کی بلندی میں ایک مکان کا اس کے لیے جس کے اخلاق عمدہ ہوں. ابو داؤد کی یہ روایت ہے 4800. تو کیا پتہ چلا؟ گفتگو. پھر اگلا ادب کہ بہت تیز تیز نہ بولیں. پھر اگلا ادب ہے کہ بہت من من بھی نہ کریں, بہت آہستہ بھی نہ بولیں اور بہت اونچا بھی نہ بولیں. اور کچھ لوگ تو اتنا اونچا بولتے ہیں کہ ان کو فون ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ بغیر فون ملائے بھی نیبر میں تو بات کر ہی جائیں گے, آگے پتہ نہیں ہے. اور لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے جا سکتے تھے. پھر آپ ہر بات کو عموماً جو اہم باتیں ہوتی تھی تین دفعہ دہراتے تھے. یہ بھی ایک ادب تھا. آپ اپنے گفتگو کے انداز کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ آپ میں سے کس کو شرح صدر ہے کہ میں بڑی اچھی گفتگو کرتی ہوں؟ ہاتھ کھڑا کریں, دیکھ لیجیے. اب آپ پھر چلے, آپ میں سے کون کسی دوسرے کے بارے میں گواہی دیتا ہے؟ آپ سارے ایک دوسرے کو کافی حد تک جانتے ہی ہیں نا, آپ جان ہی گئے کئی مہینے سالوں سے, ماشاء اللہ آپ ساتھ ہیں. آپ میں سے کون دوسرے کی گواہی دے سکتا ہے کہ مت ایسے اپنی کلاس میں سے کسی کا نام لے دیں؟ نہیں, لڑائی نہ ہو جائے بعد میں, یہ یاد رکھیے گا. جی سارے ہی اچھے ہیں, تو اپنے لیے بھی بہتری کی کوشش کریں. یقین کریں کہ یہ چیز ہماری چھپ نہیں سکتی. مسئلہ یہ ہے ہمارے جسم پہ داغ دبے ہوں چھپ جائیں گے, ہے نا, بال ہوں چھپ جائیں گے, چوٹ لگ جائے چھپ جائے گی, ہماری گفتگو چھپتی نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ ابھی تو ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نا, کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہوتا اپنی زندگی میں, لیکن آپ صرف ان کو سنتے ہیں. اب آج کے دور میں تو یہ مشکل ہے, لیکن فیملی رشتہ داروں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ صرف ریڈیو اسٹیشن ہوتا اور آج جتنے معروف اسپیکرز ہیں, اگر آپ لوگ صرف ان کو سنتے تو آپ کے ذہن میں ان کا ایک امیج بنتا ہے نا. اب تو چلے ویڈیوز ہیں, اور اسپیشلی جو میل بردرز ہیں ان کی تو ویڈیوز کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے نا, تو ہمارا ایک امیج بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا. آپ اپنی ریکارڈنگ کریں, سب سے مشکل کام آپ کو دینے لگی ہوں, اپنی ریکارڈنگ کریں. عام طور پہ جب آپ بولتی ہیں, بس آپ فون کال کر رہی ہیں کسی سے, سب سے بہتر آپ کو ریزلٹ اس وقت ملیں گے. کانشیس نہیں ہوں کہ آپ کی ریکارڈنگ ہو, کسی اور کو کہہ دیں کہ کر لے بعد میں آپ کو دے دیں. پھر دیکھیں, وہ ایک بچہ تھا, اس نے ریکارڈنگ کر لی کب, جب گھر کی دو خواتین کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی, جس کو ساس اور بہو کہتے ہیں, اور وہ ریکارڈنگ کر لی. شام کو جب باپ آیا تو اس نے پلے کر دی, تو وہ ماں بھی منہ چھپا رہی تھی تو دادی بھی منہ چھپا رہی تھی. بلیو می, ہم غصے میں وہ بول جاتے ہیں جو بعد میں ہم خود بھی نہیں سن سکتے. ایسے ہی ہے نا, تو اپنی گفتگو ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. چلیے آگے چلتے ہیں. مزاح کے آداب. کیا اسلام ہیومر کو پسند کرتا ہے؟ جوکنگ اور ہیومر میں فرق ہوتا ہے. صہیب بن سنان رومی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, آپ کے سامنے روٹی اور کھجوریں تھیں. آپ نے فرمایا, آئیے تناول فرمائیے. میں نے کھجوریں کھانا شروع کر دی. آپ نے فرمایا, تم کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ دکھتی ہے, یعنی گرم ہوتی ہیں, زیادہ کھانی نہیں چاہیے. میں نے کہا, میں دوسری طرف سے چبھا رہا ہوں. یعنی جس طرف کی آنکھ خراب ہے وہ نہیں کرتا. اس پہ آپ مسکرا دیے. ابن ماجہ کی روایت ہے 3443. تو کیا کیجئے؟ نمبر ایک, پہلا ادب مذاق کا کہ جھوٹ نہیں بولنا مذاق کے نام پر بھی. آپ نے فرمایا کہ خرابی ہے اس شخص کی جو ایک ایسی بات کہتا ہے جس کو سن کر قوم ہنستی ہے اور وہ بات جھوٹی ہوتی ہے, خرابی ہے اس کے لیے, خرابی ہے اس کے لیے. ویل کا لفظ آتا ہے, ترمذی 2315. پھر دوسری بات جو مزاح میں کہ خوش طبعہ رہی ہے, لائٹ ٹاک, لائٹ مائنڈیڈ, سچ بات کہیں. آپ کو ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ کتنا زیادہ ہم پہ اثر ڈالتے ہیں. آپ دکھی لوگوں میں رہ کر آئیں, آپ بھی دکھی ہو جائیں گے. آپ گھبراہٹو قسم کے لوگوں میں رہ کر آئیں, آپ بھی گھبرانے لگیں گے. اور آپ خوش لوگوں میں رہیں, آپ کو خوش رہنا آئے گا. خاص طور پہ بچہ خاموش آبزرور ہوتا ہے, ہماری بہت ساری باتیں ایسی سیکھ لیتا ہے. ماں خوش رہے گی, بچے کو بھی خوش رہنا آئے گا. اور میں انگلیوں پہ گن کے بتا سکتی ہوں کئی مثالیں جو مائیں چڑچڑی ہوتی ہیں نا. چڑچڑی سے مراد گھر میں خوش نہیں ہے, سسرال میں تو اور بھی تنگی ہے, یا کچھ بھی ہے, ان کے بچے بھی چڑچڑے ہوتے ہیں. اور جو ماں اسمائلی ہے ان کے بچے بھی اسمائلی ہوتے ہیں. ڈائریکٹ ٹرانسفیوز ہوتی ہے یہ چیز, خوش طبعی ہونی چاہیے, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیں, میں یہ سوچتی ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نے کبھی نعمت نہیں سوچا. مثلا اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی شخص ہے, آپ کا ایک بچہ ہے, जब वो घर में आता है तो सारे हंसते ही रहते हैं, वो एक रिलैक्सिंग है। किसी के हस्बैंड है वो बहुत लाइट माइंडेड है, रिलैक्स मूड में होते हैं। घर में कोई खातून है, आप खुद अपने आप को लेकर देखिए कि आपकी मौजूदगी में सारे खुश खुश रह रहे होते हैं कि परेशान है। आप बिलीव में कि एक बहुत बड़ी नेमत है, अच्छे लोगों के साथ में ये भी नेमत है कि आपके साथ खुश तबा लोग हों, बोरिंग नहीं होना चाहिए। बस बीवियां बहुत बोर होती हैं माजरत के साथ, शौहर तो सारे ही होते हैं इसलिए आपसे ऐसा दुखी ना हो, लेकिन बीवी को बहुत खुश तबा होना चाहिए, जॉली फ्रेंडली मजा। एक स्टोरी रोज सुनाए, एक जोक रोज सुनाए, आप लो अब मैं इनको और खराब करूं। बच्चों के साथ आप बच्चे बन कर तो देखें, फिर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। आप देखिए खाला हैं तो वो उस खाला को कहीं जाने नहीं देंगे, नहीं खाला आप हमारे घर रहें, कोई फुफ्फू हैं तो ऐसी होंगी। हाँ आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, कौन सोचता है आप में से क्या बहुत खुश तबा है? तो ये सारे बेकार ही लोग बैठे हुए इधर। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आता है, कहने लगा अल्लाह के नबी मुझे सवारी दे। आपने कहा अच्छा तुम आना, मैं तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दूंगा। तो कहने लगा मैं ऊँटनी के बच्चे का क्या करूँगा? तो आपने कहा क्या हर ऊँट ऊँटनी का बच्चा नहीं होता, यानी कि ऊँटनी का बच्चा बड़ा हो चुका होगा, वो दूंगा तुम्हें। अबू दाऊद 4998 है। तो अल्लाह के नबी वाकई खुश तबा थे, ये तो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और कुरान में कहाँ पढ़ा है अल्लाह के नबी के बारे में, याद है सूरत आले इमरान, फबिमा रहमत मिन अल्लाहि लिंत लहुम, बस ये अल्लाह की रहमत है कि आप इनके लिए कितने नरम हैं। अगर फ़ज़ होते, फ़ज़ कहते हैं वो गंदगी जो नालियों में फंस जाती है, और गलीज़ अल कल्ब, दिल भी गंदा होता और आपके अंदर यानी अखलाकी खूबियां ना होती तो आप क्या होता है लनफद्दु मिन हौलिक, ये सारे आपके करीब से भाग जाते। और यकीन कीजिए कुछ लोगों से लोग भागते हैं, आप अपने आप को चेक कीजिए, मेरे से लोग दूर तो नहीं भागते। आपने फरमाया कि वो शख्स बहुत बदनसीब है, यानी ऐसा शख्स कि लोग उसकी वजह से दूर होने लगे। मोमिन कौन होता है? मालिफ व योलिफ, मोहब्बत करता भी है और उससे मोहब्बत की भी जाती है, तो हमेशा कोशिश करें। तो ये चंद आदाब थे जिससे हमें क्या पता चला कि मैंने आपने इंशाअल्लाह ताला अपने आप को बेहतरीन बनाना है। आप देखिए कि खुशी का जरिया बने, बस लोगों ने सोचा हुआ कि हमने सिर्फ जन्नत में जाके खुश होना है, मुझे इसमें भी शक है। कुछ लोग जन्नत में जाकर भी शायद गिले करेंगे जब तक उनको पहले नहरे हयात या हयावान में नहीं गुजारा जाएगा, बिलीव मी। कुछ लोग नेक बहुत होते हैं पर उनको खुश नहीं रहना आता। तो आप अपने आप को एक खुशबू बना लें, कोई ऐसा फूल बना लें कि जिसकी वजह से दूसरों में खुशी का मामला दें, खुशी दें। और मैंने एक हदीस को इतना करीब से मैंने इसको अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है कि दूसरों के दिल में खुशी भरना, लफ्ज़ में गलत ना बोल दूँ इसलिए बोल नहीं रही अरबी के, कि जो पूरे दाखिल करने का लफ्ज़ है, मफहूम उसका कुछ ऐसे ही बनेगा कि अपने मुसलमान भाई के दिल में खुशी भरना, सुरूर का लफ्ज़ आता है, ये बहुत बड़ी नेकी है। हर दिन कोशिश करें, आपके साथ जो भी लोग रहते हैं, माशाल्लाह हम इंसानों में जीते हैं, जहाँ भी आप आते हैं, यहाँ आते हैं ना, आप पढ़ने आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप अंसारुल्लाह भी हैं साथ, सोने पे सुहागा, खुशी दे के जाएं, जिससे आपकी नज़रें टकराएं, स्माइल, बात हो हेलो, किसी को टच कर सकते हैं हल्की सी, यानी ज़िंदगी में एक खुशी का लज़्ज़त दीजिए। जो लोग आपके लिए कुछ भी करते हैं आप उनको खुश करें, आप देखेंगे कि आप लोगों के पसंदीदा लोग बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जितना ज़्यादा आप इस पे अमल करेंगे आपकी अपनी ज़िंदगी खुश होगी, दूसरों को देने से पहले आपके अपने पास होनी चाहिए। इस ग्लास में पानी है तो मैं पीऊँगी तो मिलेगा ना, अगर इसमें पानी है ही नहीं तो मुझे कैसे मिलेगा? मेरे अपने अंदर खुशी नहीं है तो मैं आपको कैसे दूँ? मेरे अपने अंदर सुकून ही नहीं है तो मैं आपको सुकून कैसे दूँ? मेरे अंदर इत्मीनान ही नहीं है तो मैं आपको इत्मीनान कैसे सिखाऊंगी? तो जितना ज़्यादा इस पे फिक्र करेंगे उतना होगा। जी आपका सवाल। तंज अच्छा नहीं है, इस्लाम ने मना किया तंज, आप सूरत हुजरात में पढ़ते हैं। देखिए तंज का मानी होता है तीर मारना, किसी को आप अपनी बात से एक तीर मार रहे होते हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। मजाक ठीक है, मजाक ठीक नहीं है, आप किसी का मजाक भी ना उड़ाएं, ये भी लिख लें, मजाह जायज है, मजाक जायज नहीं है। हजरत मूसा ने इसको क्या कहा था? जहालत। पहली दुआ है कुरान में सूरह फातिहा के बाद तरतीब के एतबार से। किसने कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। तो मजाक कर सकते हैं, लाइट माइंडेड रहिए, लेकिन बहुत ज्यादा किसी का दिल दुखाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। और ये कहा होती है जहां बेतकल्लुफी होती है। बेतकल्लुफी रिश्तों को कमजोर कर देती है। आप किसी रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं ना, तो बेतकल्लुफ हो जाए, सीधी सी बात है। बाद अब बाद नसीब जो बात पड़ी ना, और आप देखिए आप कहीं हम हकूक अफराद शुरू करने लगे, इतनी बात मैनर्स में क्यों? अगर मेरे मैनर्स ही ठीक नहीं है तो मैं अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी बीवी कैसे बनूंगी? मुझे बताइए, मेरा तो अपना किरदार ही ठीक नहीं। बाद हम चाहते हैं अपने रिश्तेदारों के हकूक दें सब, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं है। जी आप
कोशिश के, मेहनत करने के, अगर कोई ना सीधे रास्ते पे आए तो उसके लिए मुझे
कोई
कोई
बात
हल
नहीं
बताए।
जी, ये भी एक सवाल है। देखिए आपके रास्ते में एक पत्थर है, आप उसको नरम करना चाहते हैं वो होता नहीं है, हटाना चाहते हैं हटता नहीं है वहां से, आप क्या करें? इग्नोर ग्रेसफुली। ऐसे लोगों के साथ एक ससूल रखिए, ना तो इतनी कड़वाहट हो के शक्ल नहीं देखनी, और ना हर वक्त उनके सर पे सवार रहे। जिनसे भी हम खुश होते हैं या जिनको हम नॉर्मली मिलते हैं, क्या हर वक्त मिल रहे होते हैं? खुशी कम ही है या चले कभी है? तो जिन लोगों से आपको उम्मीद है ना कि जाएंगे तो जरूर कोई कड़वी बात ही कहेंगे, कोई इन्होंने ताना ही दे देना, तो आप कम मिलें और ऐसा मौके ही ना आने दें कि वो आपको दिखाएं। फिर आप उनकी बातों को दिल से निकाल दें, उनकी बात को दिमाग तक ना रखें, दिल में नहीं, बस सुने और निकाल दें। बस एक सास है वो ताने देती हैं। अब बहू को पता, उठते बैठते इन्होंने मुझे देना है, जब सामना हुआ उन्होंने कुछ नक्स ही निकालना है। मिसाल है, अब क्या करें? आपकी सास अलहमदुल्ला। देखिए कुछ चीज़ों को वी नीड टू एक्सेप्ट इट, इफ़ यू कैंट बीट इट एक्सेप्ट इट। कुछ चीज़ें तोड़ नहीं सकते तो फिर उसको ठुकोरते क्यों हैं, फिर उसमें दराड़ क्यों डालते हैं? अम्मी की आदत है बोलने की, बोलने दीजिए। आप सोचें कि पता नहीं किसको कह रहे हैं, अल्लाह के नबी के सामने लोग कहते थे मुजम्म का, पता नहीं किसको कह रहे हैं, मैं तो मोहम्मद हूँ, मेरा नाम तो मेरी माँ ने मोहम्मद रखा है। फिर वो जो दुखी होना, जलना कुड़ना, फिर मियाँ को बताना, फिर साथ ये भी कहना बाप आगे ना बताइएगा, ये नहीं मैंने तो दिल हल्का किया, वो कहेंगे अब मैंने भी तो किसी से करना है, ये गलत है। मियाँ तक तो कभी आने ही ना दे बात, वो बेचारा क्या करेगा, उसकी तो वो जन्नत है।